गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी अयम जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Bihari, Radha Vrindavan Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Lalita Devi, Radha Madan Mohan Lalita Devi. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya, Jaya, Gurudev, Jaya, Jaya, Gurudev. Gurudev, Gurudev, Jaya, Jaya, Gurudev. Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Parivajakacharya Stotarasat Srimatis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya. ISKCON Sanstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jaya. Namacharya Ridas Thakur Ki Jaya. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kundu Radha Kundu Giri Govardhan Ki Jai Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dwarka Dham Ki Jai Maya Purnavdeep Dham Ki Jai Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Bhagavad Dharma ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrind ki jai, Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jaya Mudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Skanda Chauta Adhyay 31 Shlok Ramank 3. Hare Krishna. Tan Nirjita Prana Mana Vacha Drishaha Jita Asnan Shanta Samana Vigrahana Pare Amale Brahmani Yojita Atmanaha Sura Sura Ingya Dadrishe Sma Narada Tanirjita Prana Manova Chodrisho Jita Sananan Shanta Samana Vigrahan Paremale Brahmani Yoji Atmana Sura Sure Dyo Dadrishesma Narada Tanirjita prana mano vacho drisho Jita sananta samana vigrahan Paremale brahmani yoji atmana Sura Sure Dyo Dadrishesma Narada Tanirjita Prana Mano Vacho Drisho Jita Sanan Manta Samana Vigrahani Paremale Brahmani Yoji Atmana Sura Sure Dyo Dadrishesma Narada Tanirjita Prana Mano Vacho Drisho Jita Sanan Shanta Samana Vigrahan Paremale Brahmani Yojitatmana Sura Sure Dyo Dadrishesma Narada Tanirjita prana mano vacho dyasho Jita sanan shanta samana vigrahan Paremale brahmani Sura Sure Dyo Dadrishesma Narada Mataji's Tan Un Sabko nirjita purnataya sayamit prana pranavayu pranayam ki vidhi se manaha man vachaha vani drishaha tata drishti jita asnan yogik asan ko jeetne wala shanta shant samana sida vigrahana jinke sharir pare divya amale samast bhautik kalmash se rahit brahmani brahma me yojita samlagna atmanah jinke man surasur igya devo tatha asuro dwara pujit dadrishe dheka sma ta narada shi narad munine. Anuvad aur tatparya Srila Prabhupada dwara yogasan ka abhyas kar lene par prachetaho ne pranavayu man vani tatha बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया. इस तरह प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए. सीधे बैठकर वे परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके. जब वे ये प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित श्री नारद मुनि उन्हें मिलने आए. तात्पर्य में प्रभुपाद ये बता रहे हैं, इस श्लोक में परे अमले शब्द महत्वपूर्ण है. श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है. परम सत्य का साक्षात्कार तीन अवस्थाओं में होता है, निराकार तेज, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. अपनी स्तुति में शिव परब्रह्म के व्यक्तिगत स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसमें व्यक्तिगत लक्षणों का वर्णन किया गया था. स्निग्न प्रारंग नश्यामम, शिव के उपदेश का अनुसरण करते हुए प्रचेताओं ने भी परम ब्रह्म के श्याम सुंदर रूप को मन में धारण किया. यद्यपि निर्गुण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म तथा परम पुरुष के रूप में ब्रह्म ये सभी आध्यात्मिक स्तर पर एक समान है, किंतु अध्यात्म में परम ब्रह्म के व्यक्तिगत लक्षण अर्थात स्वरूप ही चरम लक्ष्य होते हैं. श्री नारद मुनि सर्वत्र विचरण करते रहते हैं. वे असुरों के पास जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं, जहाँ उनका समान आदर होता है. इसीलिए उन्हें यहाँ पर सुरा सुरेध्यो यहाँ कहा गया, जिसका अर्थ है देवों तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित. श्री नारद मुनि के लिए प्रत्येक द्वार खुला रहता है. यद्यपि असुरों तथा देवों में सनातन शत्रुता है, किंतु श्री नारद मुनि का सर्वत्र स्वागत होता है. निसंदेह श्री नारद मुनि को देवताओं में से एक माना जाता है और देवर्षि का अर्थ है देवताओं के बीच साधु पुरुष. किंतु असुर तक भी श्री नारद मुनि से वैर नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुरों तथा देवताओं द्वारा समान रूप से की जाती है. परम वैष्णव की स्थिति श्री नारद मुनि के ही समान होनी चाहिए. परम वैष्णव की स्थिति श्री नारद मुनि के ही समान होनी चाहिए. वह पूर्णतया स्वतंत्र एवं द्वेष रहित होना चाहिए. ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakan Vitamcha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kant Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna तो सभी का स्वागत है आज के इस भागवत कथा में कई लोग शायद आप पहली बार आ रहे हैं तो इस संदर्भ से परिचित नहीं होंगे फिर भी संक्षेप में मैं बताता हूँ ये श्लोक जो चल रहा है ये कहानी है एक राजा की उसका नाम था प्राचीनी भरीषत उसने अपने पुत्रों को तपस्या के लिए भेजा था उन दिनों में राजाओं ये जानते थे कि आगे राज्य संभालना है तो बचपन से ही तपस्या का ट्रेनिंग देना पड़ता तो उन्होंने उनको भेजा था तो इन लोगों ने बहुत ऐसे तपस्या किया हाँ पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे उनमें ऐसी शक्ति थी और उनकी तपस्या थे महादेव शिवजी भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने आके उनको भगवान के महिमा के बारे में बताया जहाँ पे यहाँ उल्लेख किया है भगवान का स्वरूप उनका रूप कैसे होता है ऐसे नहीं कोई निराकार जैसे हम विग्रह देखते हैं वैसे रूप का वर्णन किया था उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिया उनको और उनसे भी मिली उन्होंने आश्वासन दिया उनको अब इसके बाद आप अपने घर चले जाओ गृहस्थ जीवन में रहो राज्य संभालो तुम यहाँ पे फंस नहीं जाओगे भौतिक संसार में ये आश्वासन दिया उनको तो ये संदर्भ ऐसा है कि वो हजार साल तक राज्य संभाला आपको आश्चर्यचकित हजार साल कैसे हो सकता उन दिनों में ये जो कथा है आयु उतने साल होती थी तो हजार साल राज्य संभालने के बाद उनको लगा कि अभी बच्चे बड़े हुए हैं मुझे घर में रहना सही नहीं है तो अपने पत्नी को बच्चों के हवाले सुरक्षित देखकर वो निकल गए ऐसे जगह पे आए हैं जो बहुत ही एक तीर्थ स्थान था जहाँ पे ऐसे महान संत पुरुषों ने अपना शरीर त्याग किया था ऐसे स्थान पर आकर हो तो फिर से करने लगे। अभी ये इनको तो दर्शन हुआ था, एक तरह से देखा जाए तो पूरा आत्मा साक्षात्कार है, लेकिन फिर भी यहाँ बता रहे आज के श्लोक में कि वो सब लोग एकांत में ऐसे स्थिर बैठ गए और अपने आत्मा को, अपने मन को, हाँ आत्मा को मन के द्वारा पूरी तरह से भगवान के रूप में उन्होंने केंद्रित किया, तैयार हो गए। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे नारद मुनि आ गए। तो ये है आज का श्लोक, और उसके बाद का जो श्लोक है उसके हम सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे। जैसे ही प्रचेतों ने जो ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, वे तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे, और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। तो एक महत्वपूर्ण विषय आता है, वो व्यक्ति कितना भी आध्यात्मिक प्रगति किया है लेकिन वो दूसरे एक ऐसे महान संत को देखता है तो तुरंत एक स्वभाव होता है कि वो उठकर खड़े हो जाते हैं और उनकी आदर करता है। हमने सुना है कुछ श्लोकों पहले कि ये प्रचेत कोई साधारण नहीं थे, उनको तो आत्म साक्षात्कार हुआ था, लेकिन उन्होंने नारद मुनि को पहचाना, क्योंकि नारद मुनि कोई साधारण नहीं थे। हम तो नारद मुनि के बारे में सुनते हैं कि वो नारायण नारायण बोलते हैं और लोगों के बीच ऐसे, लेकिन नारद मुनि एक शुद्ध भगवान के भक्त हैं और इतने उनके हृदय में दया है कि वो एक जगह पे रहते नहीं हैं, वो हमेशा भ्रमण करते रहते। तो यहाँ बताया गया है कि सुर और असुर, असुर के पास भी जाते हैं तो असुर भी उनसे द्वेष नहीं करते, और प्रभुपाद यहाँ बताते हैं हर एक वैष्णव होता है भगवान का भक्त, उसको इस तरह का गुण होना चाहिए, उसमें कोई सुर और असुर का भेद नहीं होना चाहिए, कि दोनों की तरफ से आकर्षित करना चाहिए उन लोगों को। तो ये नारद मुनि में था। तो ये ऐसे नारद मुनि जब आते हैं तो उनको आसन, अब ये तो एकांत में तपस्या कर रहे हैं लेकिन नारद मुनि को देखा जैसे खड़े हो। तो जो क्षत्रिय होते थे राजा, अभी प्रचेता भी क्षत्रिय हैं राजा हैं लेकिन अभी उनका सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है, वानप्रस्थी बोलो, और सब तैयार हैं भगवान के धाम जाने के लिए, लेकिन नारद मुनि को देखे उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अभी क्या जरूरत है नारद मुनि की, हम तो अपने आप साक्षात्कार भगवान ने दर्शन दिया है, अभी इनसे क्या मिलना है, नहीं, उन्होंने उनका पूरा सत्कार किया, उनको बिठाया। तो ये है जो एक क्षत्रिय होते थे, आपने सुना होगा कैसे रामायण में महाराज दशरथ जब विश्वामित्र मुनि आते हैं तो खड़े हो जाते हैं और उनको अपने राजगद्दी में बिठाते हैं और उनको कहते हैं महाराज। अभी महाराज कहने का अर्थ क्या है, कोई साधु पुरुष को महाराज ऐसे उल्लेख करना, महाराज का अर्थ है जिन्होंने वश में किया है, जैसे राजा को बोलते हैं ना महाराज, क्योंकि उसने ऐसे वश में किया है, कांकर किया है ना युद्ध में जाके। तो फिर इनको क्यों महाराज कहें, क्योंकि इन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है, तो इसलिए उनको महाराज। हाँ तो वो जानते थे कि मेरे पास बहुत कुछ सब धन है लेकिन इनके पास जो है वो मेरे पास नहीं। तो ऐसा एक कहानी आती है ना, जो एक राजा बहुत चिंतित हो गया, वो साधु पुरुष था, वो राज में एक ऐसे एकांत जगह में कुटीर बना के बहुत ही तपस्या में, तो उसने जाके क्यों इतना तपस्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मेरे राज दरबार में मैं जगह देता हूँ, तुम यहाँ पे रहो अच्छे घर में ऐसे। तो साधु ने जवाब दिया, देखो राजा, जो तुम्हारे पास है ना मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है ना तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तो ऐसे मत बोलना कि तुम मेरे लिए ये सब बना के देने से तो मेरा कुछ बहुत बड़ा, हाँ उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरे पास जो है तुम्हें ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जानते थे कि इनके पास क्या है, वो मुझे चाहिए। तो ये होते हैं राज ऋषि। तो प्रचेत लोगों ने पहचान लिया। हाँ कहीं हम, और यहाँ ऐसे बताया गया कि प्रचेत लोग एकदम समान थे, उन्होंने उस स्तर तक उन्हें अपना आत्मा का प्रगति किया था शुद्ध, कि जहाँ वो सब जीवों को समान तरह देखते थे, हर एक जीव को समान देखते थे। ये कोई साधारण बात नहीं है ना, हर एक जीव को, जैसे भगवद गीता में कहते हैं पंडिता समदर्शिना, यानी बाहरी शरीर को नहीं देखते थे, सब आत्मा से देखते थे, आत्मा यानी कुछ भेदभाव नहीं, कोई जानवर को भी देखते थे उनको। तो ऐसे स्तर पे थे प्रचेता, और उन्होंने नारद मुनि को, और आगे श्लोकों में आता है कि किस तरह का उन्होंने प्रश्न किया और नारद मुनि ने किस तरह जवाब दिया। लेकिन हमारे लिए ये जानना कि किस तरह एक साधु होते हैं, अगर हम पहचानेंगे तो हम उस तरह उनके सामने जाएंगे। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद दो, ज़्यादा करके हमारे देश में साधुओं को देखते तो कोई भौतिक चीज़ों के लिए अपेक्षा करते ना, अरे ये साधु है, इनके पास ये भगवान से बहुत प्रिय है, जो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ शायद इनसे पूछ लूँगा, इनसे मिल जाएगा। साधु से वही नहीं मांगना है। हाँ हमारे संस्थापक आचार्य के साथ ऐसे शुरुआत के दिनों में जब वो परदेश से आए, तो उनके साथ ऐसे अनेक पाश्चात्य देश के शिष्य थे, गोरे वर्ण के एकदम, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने संसार से वैराग्य लिया था, भक्त बन गए थे, वैष्णव बन गए थे। लेकिन हमारे देश के लोग जब उनको देखा तो स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। तो प्रभुपाद जानते थे कि आशीर्वाद का मतलब क्या है, क्या मांग रहे हैं, बस यही मांग रहे हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ाओ, हाँ मेरी लड़की की शादी है, मेरे बच्चे की, मेरे परिवार की। अभी जो सच्चा साधु होता है वो तो इस तरह का आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बंधन में डालता है। हाँ ये ज़रूरी है, लेकिन ये तो जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है उससे तो दूर करता है ना, तो कोई सच्चा साधु ऐसे आशीर्वाद देगा। तो फिर एक बार प्रभुपाद थोड़ा सा तंग आ गए कि बार बार पूछ रहे, तो उन्होंने उनके शिष्यों की तरफ देखा, देख पाश्चात्य देश के, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी इनके जैसे बन जाओ। उसके बाद कोई उनके डरते थे पास। ये हमारी कमजोरी है कि डरते ज़रूर हैं कि भौतिक संसार से जब आसक्ति होती है तो डर जाते हैं ना, अरे यार घर, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में रहते हुए ही जो ये प्रचेत तपस्या किया, कभी किया तपस्या शुरुआत में, बाद में अंत में, उसके बीच में हजार साल तो घर गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन गृहस्थी चलाते समय उनकी चेतना कभी वो भूले नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अंत में मरण मृत्यु के स्थिति कैसे तैयार होना है। मृत्यु का नाम लिया जैसे लोग बोलते बहुत अशुभ है, अशुभ है, लेकिन हम अशुभ कहने से सच्चाई तो नहीं छुप सकती ना, मृत्यु का तो सामना करना ही है। तो हमारे जीवन का सच्चा यश ये है कि हमने मृत्यु के लिए किस तरह तैयारी किया। लेकिन मृत्यु के बारे में बोलना बहुत अशुभ समझा जाता है। तो ये भागवतम कथा सुनकर हमें तैयारी करना है कि मृत्यु का तो सामना मुझे ही करना है, मेरे परिवार के लोग तो कुछ मदद करने नहीं आएंगे, हम जिसके लिए सब कर रहे हैं मृत्यु के समय तो उनका कुछ काम नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अगर धन है तो हॉस्पिटल ले जाएगी या कोई अच्छे डॉक्टर से मिलाएगी, लेकिन जब समय आता है तभी तो सिर्फ हमने जो तैयारी किया है वही हमारा काम आएगा, ये जीवन का सत्य है। लेकिन अगर उसके लिए अगर कुछ समय ही नहीं निकाल रहे हैं और सिर्फ भौतिक संसार में ही लगे हुए हैं कि यही हमारा काम आएगा, इसे एक शास्त्र कहता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति है, मूर्खता है, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत ही अनमोल है, इसमें ही हम ये पा सकते हैं और कहीं पे नहीं है। तो इस तरह नारद मुनि को इन्होंने पहचाना, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि नारद मुनि भी कोई साधारण नहीं थे। हाँ, नारद मुनि की भी हम तो सुना है, नारद मुनि जाते हैं तो कभी जो बच्चा गर्भ में है वहाँ पे भी प्रचार शुरू किया है ने। आप जानते हैं कौन था वो, बाद में प्रहलाद बन गया। जब 5 साल का ध्रुव निकला था तो उसके सामने भी आए, उसको भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया और बताया कैसे क्या करना है। लेकिन वो कंस के पास भी गए थे और उसका परिणाम क्या हुआ, कंस के पास जाने से भगवान कृष्ण अवतरित हो गए जल्दी। तो यानी कभी हो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं ऐसा लगता है कि ये इनको फंसा रहे, लेकिन उसमें भी दूसरे का हित होता था। वो चाहते थे कि कंस कितना पाप करते जाएगा, इसका भी तो उद्धार करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया उनको, तो ऐसे मत सोचना कि 8वां पुत्र है, ये कहाँ से भी हो सकता है। ऐसे फूल का पंखड़ी दिखाया, यहाँ से गिने तो नंबर 1 यहाँ आता है, यहाँ से गिने तो ये 8 आता है। तो ऐसे बोलकर उसको कंस ने फिर लगा शुरू कर दिया। और तो ये है नारद मुनि, जहाँ प्रचेत उनकी स्वागत कर। तो संक्षेप में नारद मुनि के बारे में भी हम समझ सकते हैं कि ये वैसे भी उनके बचपन में भागवत में बताया जाता है कि वो एक ऐसे दासी के पुत्र थे, उसके पिता नहीं थे, कोई नहीं था उनको देखने वाला। लेकिन चतुर्मास के समय कुछ ऐसे साधु आ गए उनके घर, तो आश्रम था तो उनकी माँ उनकी सेवा कर रही थी। तो ये छोटे लड़के 5 साल के माँ का सहाय कर रहे थे। साधुओं को जब प्रसाद दिया जाता था उसमें मदद कर रहे थे, और कोई था नहीं तो वहाँ पे बैठे रहते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही उनसे पूछकर उनका महाप्रसाद ले लिया। तो महाप्रसाद गया अंदर, तो अंदर क्या हुआ कैसे हुआ, इसलिए महाप्रसाद को साधारण नहीं समझना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो कुछ सुना था, हाँ बच्चे हैं कि याद रहा नहीं, लेकिन उनके दिल में एक तरह की दृढ़ता आ गई। और ऐसा घटना हो गई कि वो साधु तो चले गए, अभी सिर्फ माँ रह गई और जंगल है और कोई नहीं है। और एक दिन माँ का सर्प डसने से मृत्यु हो गई, तभी ये लड़का अकेला रह गया, कोई नहीं है, कहाँ चला जाएगा ये। तो तभी वो वहाँ से निकले, ऐसे निकलते गए। अभी किसी को लगेगा कि ऐसे अवस्था में कहाँ जाना चाहिए, शहर में जाना चाहिए ना, जहाँ पे लोग होंगे, कोई तो देखभाल करेगा। लेकिन ये लड़का जंगल में चले गए, जंगल में गुफाओं में ऐसे, और ऐसे एक जगह पे बैठकर हो ध्यान लगाने लगे, और जो साधुओं से उन्होंने सुना था हाँ उस, तो भगवान ने उनको दर्शन दिया कम ही समय में। परमात्मा दिखे और उसके बाद भगवान दिखे, और भगवान फिर अदृश्य हो गए। फिर से ध्यान किया लेकिन नहीं दिखे। तो उसके बाद उनमें इतना इच्छा तीव्र हो गई कि वो फिर ऐसे चलते गए, निकलते गए, उधर इधर खेतों में, गुफाओं में, कभी एकांत में जाकर एक जगह पे वो बैठकर, फिर अकस्मात एक बिजली जैसे होती है वैसे उनका शरीर, आत्मा शरीर से निकला और नारद मुनि का शरीर मिल गया उनको। तो उनका शरीर कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कि माँ के गर्भ से आया, तो वो शरीर जो हम देखते हैं ना रूप, हाँ वीणा पकड़ के, और वीणा उनको भगवान ने दिया गया। तो आप सोचिए भगवान ने दिया हुआ वीणा बजाते हैं तो उसका सुर कैसे होगा। तो वो वीणा लेके वो तो उनका जो शरीर है वो शरीर कोई साधारण शरीर नहीं, पूरी तरह से वो सच्चिदानंद शरीर है। और वो शरीर इस ब्रह्मांड में ही नहीं, ब्रह्मांड के पार वैकुंठ में वो गोलोक में किधर भी वो जा सकते हैं। और जाते क्यों हैं, सिर्फ दूसरों के हित के लिए, दया से सिर्फ प्रेम बांटने के लिए। तो इस तरह ये जो आज का जो ये संदर्भ है भागवतम का, तो इसमें सिर्फ इतना ही एक है कि किस तरह से एक क्षत्रिय होता है जो ज्ञानी है, वो एक साधु का किस तरह आदर करता है। हमारे संस्थापक आचार्य जब भी थे यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। उन्होंने वैसे देश स्वतंत्र होने के बाद भी महात्मा गांधी को उन्होंने लिखा कि अभी आपको ये सब छोड़ देना चाहिए राजनीतिक, और आप भगवान के भक्ति में लग जाएं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने भी नहीं, महात्मा नाम तो दिया है, सही है, हाँ हम सब जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर महात्मा जो होते हैं वो पूरी तरह से भगवान की आश्रय लेना चाहते हैं, उनको महात्मा कहा जाता है। महात्मा सिर्फ किसी के नाम देने से कोई महात्मा नहीं होता है। महात्मा यानी उन्होंने आत्मा पूरे भगवान का आश्रय लिया गया। वैसे ही प्रभुपाद ने, जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनको बहुत उन्होंने प्रयास किया, कहा गया था कि जो राजमंत्री हैं उन लोगों को किस तरह से इस विषयों पे इंटर, क्योंकि जो लीडर कैसे होता है वैसे प्रजा होती है। अगर लीडर एक धार्मिक है तो स्वाभाविक है कि प्रजा और जो कुछ भी होता है उस देश में निश्चित भगवान से संबंधित होता है जो भी। तो ये, लेकिन आज अगर कोई साधु को मिनिस्टर से मिलना है तो फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उसको, और भी खड़े रखते हैं, हाँ ठहरो उनको बोलो, उनको लगता है कि शायद कुछ डोनेशन मांगने आया है, अरे दे देंगे उसको, क्या है एक्चुअली डोनेशन क्या मांगने आ रहे, वो तो तुम्हें देने आया है, वही ना बात तो है, जो तुम्हारे पास है वो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पास है उसकी उसको ज़रूरत है। लेकिन कलयुग जैसे बढ़ते जाता है इस विषयों को लोग कम जानते हैं, सही है ना, इस विषय में, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लोग इतने मग्न हो गए हैं कि ऐसे विषयों का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है कि साधु कौन होता है। आजकल के स्कूल के बच्चों को पूछो कोई साधु कौन होता है, क्यों कौन होता है साधु, हाँ साधु यानी कौन होता है, लेकिन फिल्म स्टार के नाम बताओ, स्पोर्ट्स स्टार के नाम पूछो, या कोई अमीर, हाँ कोई बहुत ही धन कमाया है, ऐसे लोगों से तुरंत आकर्षित होते हैं। तो ये एक संस्कार जो होती है कि साधु कौन होता है और उसके पास क्या धन है और हमें क्या ज़रूरत है और जीवन का सत्य क्या है, ये भी एक ज्ञान है जो उन दिनों राजा अपने ऐसे ऐश्वर्य में रहते हुए भी जानता था, उसको मालूम था। कितने ऐसे हम भागवत में सुनते हैं जो जब भी साधु आते हैं तो लोग साधु की इस तरह, साधु के पास कुछ नहीं है लेकिन जानते हैं इसके पास क्या है, ये हमें चाहिए। तो इस तरह नारद मुनि के बारे में कुछ भागवत में बहुत लंबा है उनकी कथा, लेकिन वैसे ही ऐसे एक साधु पुरुषों में हमारे परंपरा में आज एक विशेष दिन है। कहीं हमारे अतिथिगण परिचित नहीं हो, हमारे परंपरा में ऐसे बहुत ऐसे बड़े बड़े साधु, ऐसे नहीं कि हम प्रभुपाद को जानते हैं लेकिन प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु थे, उनके ऊपर ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी, ऐसे करते गोस्वामी, ऐसे बहुत ऐसे जो लोग अपने हृदय में भगवान के पूरी तरह से प्रेम संचित रहता था उनके, और जो भी उनके संपर्क में आता था, तो वैसे आज एक ऐसे महान संत पुरुष की आविर्भाव दिन, जब आविर्भाव दिन होता है तो भक्तगण उनके लिए विशेष प्रार्थना आश्रय लेते हैं और उनके जीवन चरित्र से हम बहुत प्रेरित होते हैं कि कैसे, लेकिन इनका जीवन तो बहुत ही रोमांचक है। आज शाम के वक्त जो यहाँ पे है अतिथि विशेषकर, उसका एक उत्सव होगा 7:15 बजे, उनका समाधि है यहाँ पे, उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। तो 7:15 से 8:15 बजे तक विशेष होगा, उसमें कथा, लेकिन मैं, हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा, तो कुछ समय में फिर भी ये कितना रोमांचक है, अब ऐसे रोमांचक कथा बहुत अजीब सा लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण अवतरित हुए थे, तो वो अपने पार्षद नित्यानंद जो हमारे ऑल्टर में आप देख रहे हैं, हाँ, राधा वृंदावन बिहारी के राइट साइड में जो हाथ हैं के, वो है गौरांग महाप्रभु, यानी स्वर्ण वर्ण स्वर अवतार शास्त्र में है लेकिन बहुत ही गुपित हैं, सबको नहीं मालूम है ना, कृष्ण के बारे में सबको मालूम। तो ये हुए थे 500 साल पहले, स्वयं भगवान ये रूप में आए थे। तो उन तो वो राधा रानी के प्रेम के भाव में आए थे और सबको देना चाहते थे, सबको देने के लिए। ऐसे कभी इतिहास में होता नहीं है। जब भगवान कृष्ण आए थे उन्होंने भी घोषणा की कि सर्व धर्म परित्यज, पहले त्याग करो वो करो। तो ये तो सिर्फ देने के लिए आए, कुछ नहीं मांगते थे और पीछे पीछे जाते थे देने के लिए। लोग भागते हैं तो पीछे पीछे जाते। तो ऐसे अवतार कभी सुना है आपने? हाँ, पीछे जाग भाग लो। तो ये है गौरांग महाप्रभु, तो उनके पार्षद थे। तो एक दिन वो ऐसे ही वृंदावन की तरफ जाते हुए, वृंदावन नहीं गए लेकिन दिशा बदला उन्होंने, ऐसे जगह पे चले गए जो आज के दिन बांग्लादेश है। तो वहाँ गए तो नित्यानंद को उन्होंने कहा, नित्यानंद उनके जो पार्षद है वो बलराम जी, कृष्ण लीला में बलराम थे। तो ये जो लीला है कलयुग की जो लीला है उसमें वो नित्यानंद। तो उनको उन्होंने कहा कि ये जो संकीर्तन मैं देना चाहता हूँ सबके लिए, मुझे मालूम ना मैं किसको दूँ, मैं कौन ये संभालेगा इसको, कौन इसे आगे बढ़ाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा आप तो जानते हैं, आपको मालूम है किसको देना चाहिए। फिर वो कुछ समय के बाद जहाँ एक पद्मा नदी थी उसके सामने वहाँ देखकर चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम। तो नित्यानंद और सारे भक्त लोग बोलते ये तो नाम तो हमने इसको भी सुना ही नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं। तो नित्यानंद ये कौन है नरोत्तम? तो उन्होंने कहा कि ये नरोत्तम है उसको मैं देना चाहता हूँ, लेकिन नरोत्तम है कौन? कुछ ही समय के बाद यहाँ पे एक ऐसा भक्त का जन्म होगा, वो नरोत्तम मैंने जो मेरे हृदय में जो है प्रेम वो इसे आगे ले जाएगा। तो प्रश्न किया गया उसको मिलेगा कैसे, उसको अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया ये जो नदी है मैं इस नदी में पूरा इन्वेस्ट करके रख दूंगा, ये पानी में डाल दूंगा सब। तो ऐसे कहकर वो पानी में उतरे। जब पानी में उतरे तो पानी, ये पद्मा नदी अभी भी है, ये 500 साल पहले की घटना है। तो पानी का लेवल बढ़ने लगा है और उसमें से नदी यानी इसका प्रतीक जो पद्मा देवी है वो हाथ जोड़कर पूछने लगी मैं आपकी कैसे सेवा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ ये धन, नरोत्तम नाम का एक ऐसा आएगा तो इसे तुम उसे दे देना। तो मैं कैसे पहचानूंगी कौन है वो? नहीं, वो जैसे ही तुम्हारे नदी में वो आएगा स्पर्श करेगा तो फिर से पानी ऐसे भरने लगेगा, तो उसे तुम दे देना। ऐसे करकर वो अदृश्य हो जाती। तो ये सब नित्यानंद ये सब लोग देख रहे हैं और किसी को नहीं मालूम क्या है, क्या होने वाला है, कहाँ पे। फिर कुछ समय के बाद ऐसे जगह के बारे में बताया, केतुरी नाम पे कृष्णानंद राजा था, कायस्थ परिवार में, बहुत थोड़ा सा दुखी था, बहुत कुछ धन था लेकिन घर में कोई वंश नहीं था, लड़का नहीं था। तो बहुत प्रार्थना कर रहे थे तो उनको अकस्मात एक दिन ऐसे आवाज़ सुनी कि तुम्हारे घर में ज़रूर एक ऐसा वंशज होगा और नाम भी बता दिया उसका नरोत्तम होगा। तो उनको समझाने कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या है। फिर कई दिनों के बाद उनकी धर्म पत्नी नारायणी ने उनको कहा मैंने भी ऐसा कुछ देखा कि आपके शरीर से कुछ मेरे शरीर में आ रहा है। तो उनको लगा निश्चित कुछ तो होने वाला। तो नारायणी ने गर्भ धारण किया, उसके बाद बच्चे का जन्म हो गया बहुत ही बचपन से ही लड़का एकदम 6 महीने का था तो अन्न प्राशन के समय अन्न डालते थे लेकिन वो मुंह ऐसे बंद कर कर फेर लेता था, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एक ब्राह्मण ने कहा कि महाप्रसाद दे दो, तो जैसे ही महाप्रसाद मुंह में डाला वो लेने लगा, तो तभी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। तो कहीं ज्योतिषों को बुलाया गया, ज्योतिषों ने कहा कि ये लड़का ऐसा है और इसका नामकरण करना है तो ये न से होता है। तो कृष्णानंद पिताजी आश्चर्यचकित हो गए, जो मैंने नाम सुना था इसका नरोत्तम होगा, तो ये जो ज्योतिष है ये भी बोल रहा है कि इसका नाम नरोत्तम होगा। तो इस तरह से उसका नाम नरोत्तम, यानी ये पहले से ही घोषित किया गया था। तो ये लड़के का नरोत्तम नाम था। तो छोटे से ही घर में ऐसे कथा होती थी, लेकिन उनके घर में एक विशेष होता था कि खेतुरी गांव से जगन्नाथपुरी से लोग आते समय वहाँ से सब चले जाते थे। तो कृष्णानंद जो बहुत बड़ा धनवान आदमी था तो वो उनके लिए सेवा के लिए ऐसे कुछ पंडाल करते थे। तो ये लड़का छोटा 5-6 साल का लड़का देखता था कि इतने लोग सब जमा हो गए थे, लेकिन एक बताया गया था को ज्योतिषों ने, तुम्हारे लड़के को कभी नदी के पास जाने मत देना। तो इन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था अपने जो भी द्वारपाल हैं, जो सिक्योरिटी की, ये लड़का कभी नदी के पास नहीं जाए। तो एक दिन देखा कि ये लड़का भाग रहा है, पूछा किधर जा रहे हो, मैं मेरे मित्रों के साथ नदी की तरफ जा रहे। तो पिताजी ने पकड़ लिया उसको, बोलते किसने बोला तुम्हें जाने के लिए, मैं खुद यहाँ पे कुंड बनाऊंगा, तुम यहीं पे, यही नदी है। डर गए थे क्योंकि ज्योतिषों ने कहा था कि नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरा है, अभी क्या खतरा है नहीं मालूम। तो उसके बाद वो ऐसे पंडाल में लोग आते थे तो देखा कि एक दिन कथा चल रही है, प्रवचन चल रहे, वो कथा में चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने लगे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने, बहुत आकर्षित हो गए, पूछने लगे कौन है ये, क्या है। तो जो कथाकार थे जिनका नाम था कृष्णदास बाबा जी, तो देखा ये लड़का बहुत विशेष, तो इस तरह उसको सब कुछ बताने लगे। तो उन्होंने पूछा कि ये चैतन्य महाप्रभु है अभी, तो नहीं वो अभी नहीं है। तो वो खोसने लगे, अरे मेरे को इतना देरी से क्यों जन्म लेना था। तो उनके स्मरण में यही था कि चैतन्य महाप्रभु नहीं मिल सके लेकिन उनके अनुयायी है, भक्त अभी भी है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ऐसे घर में वो रात को, तो घर वाले देखते थे कि ये धनवान है, तो वो तो यही सोच रहे थे कि ये आगे बढ़कर हमारे पूरे जो कुछ प्रॉपर्टी है उसको संभालेगा, देख लेगा, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है क्योंकि उसने रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे लोगों की कथा सुनी है कि जो घर छोड़कर सब धन छोड़कर चले गए। तो माता पिता बहुत डर गए, स्वाभाविक हैं कि उसकी विवाह कर डालते हैं। तो ऐसे सोच रहे थे लेकिन नरोत्तम एक दिन रात को उनको ऐसे स्पष्ट एक दर्शन हो गया कि तुम पद्मा नदी में जाकर, ये रात का समय था, कोई जाने नहीं देते थे लेकिन रात को कोई नहीं था, तो खिड़की से खोद कर जाकर नदी में जाते हैं उधर। और जैसे ही वो नदी में प्रवेश करते हैं, बहुत ही अजीब सा घटना हुआ है, पानी फिर से ऊपर आया, उसमें फिर से पद्मावती देवी आई और उनके हाथ में एक कमल का फूल था, सुवर्ण, तो उन्होंने उसको लड़के को दिया। लड़की ने उतरा था, उसका वर्ण काला था नरोत्तम का, तो ये कमल का फूल दिया। जैसे उन्होंने कमल का फूल लिया सुवर्ण, उसमें परिवर्तन हो गया, वो कमल के फूल छोटा सा गौरांग महाप्रभु का रूप, और वो रूप उसके शरीर में चला गया, और वह जैसे वो शरीर में चला गया उसके आंखों में पानी आने लगी और वो गौरांग गौरांग चिल्लाने लगा। बस उसके बाद नरोत्तम वापस घर चला गया। घर वाले आए ढूंढते ढूंढते, देखा कि लड़का कुछ पागल हो गया है, उसको लगा कोई भूत प्रेत चला गया, तांत्रिक को बुलाया। फिर उसने बताया कि मुझे कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं है, ये मुझे बस भगवान का प्रेम मिला है। तो ये शुरुआत थी। आज के दिन उनका उनका जो प्राकट्य दिन है आज नरोत्तम दास ठाकुर का, और शाम को इस कथा के ज़्यादा डिटेल्स बताया जाएगा। तो मैं ये भागवत कथा में नारद मुनि के जो हम कुछ सुने, और ये प्रचेत जो राज ऋषि हैं, नारद मुनि हैं, और ये नरोत्तम दास ठाकुर, ये भी एक राजा जैसे ही था, किस तरह से आध्यात्मिक जीवन को एक महत्व दिया जाता था। तो आधुनिक जीवन में इसको ध्यान नहीं दिया जाता है। समझ लेते हैं कि जो कुछ हम आंखों से देखते हैं यही सच्चा प्रगति है। सच्चा प्रगति वही है जिस हद तक हम हमारे चेतना को, हमारे इस आयु में किस हद तक हम बढ़ा सकते हैं, यही सच्चे बहुत बड़ा यश है। दूसरा तो अपने कर्म से जो तुम्हें पैसा मिलना है वो मिलेगा ही। ऐसे नहीं कि पैसे सिर्फ दिन रात मेहनत करने से मिलता है। अगर सिर्फ मेहनत करने से ही मिलता है तो जो मेहनती है वो सब धनवान होना चाहिए, और जो मेहनत नहीं करता है वो भी धनवान हो जाता है। तो इसलिए पैसा, धन और आध्यात्मिक यश वो अलग अलग है। लेकिन आध्यात्मिक यश के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो हम सच्चे बुद्धिमान हैं, भाग्यवान हैं। तो इस तरह हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम संघ से प्रभुपाद जो अकेले पहले यहाँ से चले गए, फिर उन्होंने पूरा देश में ये ज्ञान सबको उपलब्ध कर दिया, तो 50 साल के बाद भी ये चल रहा है। और उसमें से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे गोवर्धन कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसका भी उद्देश्य यही है कि जो लोग इसके ऐसे वातावरण के संपर्क में आते हैं तो इस विषय को थोड़ा सोचना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सच्चा धन क्या है, सच्चा सुख क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है और सच्चा सुख क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन किसी का कुछ इस विषय पे, कोई ऐसा बहुत ही सिंपल था क्लास, कुछ ऐसा? हाँ, वैसे वहाँ तो बहुत कुछ प्राणायाम के बारे में बताया है कि ध्यान लगाने में बारे में बताया है, चेतना, लेकिन हम इतना समझना चाहिए कि आप योगा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, लेकिन अंत में मन किस हद तक हमारा ऐसे विषयों पे आकर्षित हुआ है, यही योग का सच्चा यश। योगासन करने का मतलब सिर्फ नहीं कि शरीर के सर पर रहें, अपनी चेतना को ऊंचा ले जाए। तो आज के इस भागवतम में हम प्रचेतों की कहानी सुने नारद मुनि के बारे में, और विशेषकर आज नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे एक महाशय, महान भक्त, शुद्ध भक्त, जो जन्म लेने से पहले ही उनकी घोषणा हो गई थी कि ऐसे आने वाले, तो उन लोगों का हमें, और हमारे संस्थापक आचार्य कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन हैं ये बहुत ही साधारण बंगाली भाषा में, क्योंकि ये बंगाल के, आपको समझ में भी नहीं आएगा चलेगा, बंगाली तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ कोई वाणी सुनता है, कोई गा रहा है और हम सुन रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब बादल गरजता है तो उसमें कुछ भाषा का संबंध होता है, सबको एक ही तरह गरजता है ना, सबको गरज रहा है। सो उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को ऐसे तुलना किया है जैसे बादल गरजने लगता है बारिश के समय, बारिश होने से पहले सबके ऊपर असर पड़ता है। भाषा भाषा आप जानते नहीं जानते, आपका हृदय बदल जाता है। ऐसे उनके अनेक सारे भजन हैं, जो भजन अभी हमारे पास समय नहीं है गाने के लिए, लेकिन जो इच्छा करते हैं भजन सुनने की, आपको 7:15 बजे नरोत्तम दास के समाधि मंदिर में आना पड़ेगा। सो सबसे जो कोई उपस्थित हैं यहाँ पर, जो रूम में रहते हैं, उनको स्वागत। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव दिवस की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।